एक मुख्य बात है वो ये है, दयालु परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय का प्रावधान करता है। दयालु परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय का प्रावधान करता है। मर्सीफुल गॉड प्रोवाइड्स फॉर हिज पीपल, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड जस्टिस फॉर हिज पीपल। मर्सीफुल गॉड, द मर्सीफुल गॉड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड जस्टिस फॉर हिज पीपल, सुरक्षा और न्याय का प्रावधान करता है, को उपलब्ध कराता है। दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय को उपलब्ध कराता है, प्रावधान कराता है। पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि इज़राइली लोग मिस्र देश से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उनकी आदत है परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा ना करना, परमेश्वर पे शक करना, शंका करना, कुड़कुड़ाना, उनके हृदय में, उनके हृदय के भीतर परमेश्वर के लिए वास्तव में भरोसा नहीं है, उसके कार्यों पे भरोसा नहीं है। जब उनके पास पानी की कमी होती है, कड़वा पानी होता है, जब खाने की कमी होती है, उनको मांस की आदत आती है मिस्र देश में, और जब उनके लिए पीने के लिए नहीं होता, कड़वा पानी, मांस और खाना, और फिर उसके बाद पानी, इन तीनों घटनाओं में हमने देखा था कि वे कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन प्रभु जी फिर भी उन पर दया करता है और उनके लिए प्रावधान कराता है। और ये सब हो रहा है जब परमेश्वर ने उनको तुरंत मिस्र देश से, बंधुआई से निकाला है, लाल समंदर पार किए हैं, फिरौन की सेनाओं को पराजित किया है, को ध्वस्त किया है, का विनाश कर दिया है, डेसिमेट कर दिया, डिमोलिश कर दिया। ऐसी परिस्थिति में प्रभु, उसके बाद भी उनके मन में प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जी दया करते हैं। चट्टान से प्रभु जी उनको पानी पिलाते हैं, स्वर्ग से मन्ना भेजते हैं, बटेर भेजते हैं, कड़वे पानी को मीठा करते हैं केवल एक लकड़ी के उपयोग के द्वारा। इन प्रत्येक अलग अलग घटनाओं में हम बार बार हम देख रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आई मीन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जब आज की घटना में हम आते हैं तो ये लोग, परमेश्वर ने इनके लिए मूसा के द्वारा चट्टान से पानी का प्रावधान किया है, 17 अध्याय के पहले पद से लेकर 7वें पद में। अगेन अनदर इम्पॉसिबल एक्ट, वाटर फ्रॉम द रॉक, चट्टान से प्रभु जी पानी का प्रावधान कराते हैं। उसके बाद तुरंत उसके बाद 8वें पद से इनके सामने एक और दूसरी परिस्थिति खड़ी जाती है। तो यहाँ पे जो आज का खंड है, बेसिकली दो मुख्य बातें हो रही हैं। पहली एक घटना है अमालेकियों का के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण होना, वर्सेस 8-16 में अमालेकियों द्वारा इनके ऊपर आक्रमण होना, एंड चैप्टर 18 में बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं यित्रो से मूसा की मुलाकात, से भेंट, यित्रो से भेंट मूसा की। अभी हमने पिछले बार जब हमने देखा कि इज़राइली लोगों को यद्यपि परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, अब वे जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, जंगल के मार्ग से होकर के कनान देश की ओर जा रहे हैं, इन सब के बीच में प्रभु जी उनकी परीक्षा करें, गॉड इज़ गोइंग टू टेस्ट देम। उनके जीवन में प्रभु जी उनके ऊपर कई अनेक परीक्षाएँ लेकर के आएंगे, इनका विश्वास कैसा है, इनका भरोसा कैसा है। ये जो यात्रा है ये सरल यात्रा नहीं होगी, ये यात्रा कठिन होगी। प्रभु जी इनको परखेंगे, लेकिन समस्या यह है प्रभु जी के परखते परखते ये लोग भी प्रभु जी को परखने लगते हैं। भीतर इनके अभी तक जो समस्या है, इनके भीतरी समस्या है, इनके अंदर कुड़कुड़ाना है, प्रभु के कार्यों पे प्रावधान पे शक करना है। लेकिन जो आज खंड में 17 अध्याय के 8 पद से लेकर 16 पद में हम देखते हैं, विदेशी आक्रमण इनके ऊपर होता है, बाहरी सेनाएँ, बाहरी शक्तियाँ इनके ऊपर आक्रमण कर रही हैं बिना किसी कारण के, अकारण, विदाउट एनी प्रोवोकेशन। अब ये लोग यहाँ से रफीदीम में हैं, ये लोग आगे जब बढ़ते हैं यहाँ से, जैसे ही आगे बढ़ते हैं 8 पद से, अमालेकी लोग आते हैं और इनसे लड़ाई करने लगते हैं। और ये जो अमालेकी लोग हैं, ये अमालेकी लोग अगर इनके इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसके 36वें अध्याय में छत्तीसगढ़ के 12 पद में, तो हम पाएंगे ये अदोमी लोग हैं और ये एक्चुअली इन एसाव के वंशज के हैं, अदोमी लोग, सॉरी अमलेकी लोग, इडमाइट हैं, अदोमी लोग हैं और ये लोग एसाव के वंश के हैं। और आपको मालूम है एसाव और याकूब, एसाव याकूब, एसाव जिसने अपने पहलौटे के उत्तराधिकार को थोड़े से दाल के लिए या सूप के लिए बेच दिया था, किसी वंश में अक्सर किसी एक पूर्वज के निर्बुद्धि, निर्बुद्धिता या परमेश्वर पर भरोसा ना करना या परमेश्वर के विरोध में जाने के निर्णय के कई बार उसके परिणाम कई वंशजों तक की पाए जाते हैं। और ये जो अमालेकी लोग हैं ये इसराइलियों के पीछे पड़े रहेंगे अंत तक की, ये लोग पीछे पड़ेंगे। और ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अगर आप, हमारे पास समय नहीं है, व्यवस्था विवरण उसके 25 अध्याय 17 पद से 18 पद में अगर आप जाएंगे बाद में आप देखेंगे व्यवस्था विवरण उसके डिट्रॉनमी चैप्टर 25 verses 17-18 हम वहाँ पाएंगे। तो हो क्या रहा है, इसराइली लोग एक कतार में चल रहे हैं, ढेर सारी भीड़ हैं, मिस्र देश से निकल के आ रहे हैं। तो जब लोग कतार में चल रहे हैं तो जो लोग चलने में धीरे चल रहे हैं, दोज़ आर स्लो टू वॉक, जो कमज़ोर हैं वो पीछे की ओर रह गए, जो लोग पीछे की ओर रह जा रहे हैं उनके ऊपर ये लोग हमला करके उनको नाश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो अमालेकी लोग हैं बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट विकृत मानसिकता के लोग हैं, कमज़ोर और निहत्तों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना चाहिए, ये लोग किन पे हमला कर रहे हैं, किन पे आक्रमण कर रहे हैं, अमालेकी लोग परमेश्वर के लोगों पे आक्रमण कर रहे हैं। और इन लोगों की सुरक्षा किसके हाथ में है, इनकी सुरक्षा परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। यहोवा परमेश्वर ने योजना बनाई है अपनी इच्छा में होकर के उनको मिस्र देश से बाहर निकाल के लेकर के आए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको कनान देश में प्रवेश कराऊँगा। तो जब यहोवा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि ये मेरे लोग हैं, इसराइल मेरा पहलौठा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, मैंने इसको बाहर निकाला है और मैं इसको अपने देश में लेकर जाऊंगा ताकि ये मेरी आराधना करें, और फिर जब उस योजना के ऊपर कोई व्यवधान डालेगा, कोई बीच में गड़बड़ करेगा, तो वो किससे, किसका सामना कर रहा है, वो किसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो किसका विद्रोह कर रहा है। तो अमालेकी लोग जानते हुए या ना जानते हुए परमेश्वर स्वयं पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं, अपने लोगों पर दया करते हैं और उनके साथ उनकी उसकी कृपा बनी रहती है। इस घटना में 8 पद से लेकर 16 पद हम स्पष्टता से देखेंगे। यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, सैन्य रणनीति के बारे में नहीं है, इसराइली लोग के पास बुद्धि नहीं है मिलिट्रीली, सैन्य रीति से ताकत नहीं उनके पास। 8 पद में उनसे लड़ने के लिए आए, मूसा ने यहोशू का नाम यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, यहोवा हमारा उद्धार है, ठीक है, इसके नाम का अर्थ परमेश्वर हमारा उद्धार है। मूसा ने यहोशू जो उसका सेवक है, कुछ लोगों को चुना लड़ने के लिए, लेकिन मुख्य भरोसा इनका लोगों के ऊपर नहीं है। 9वें पद में मुख्य भरोसा इनका यह है, 9वें पद के 3री लाइन में, मैं परमेश्वर की लाठी लेकर के, परमेश्वर की लाठी लेकर के। और पुराने पीछे के खंड में जाएंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर की लाठी, वो जो लाठी जो मूसा अपने साथ में लेकर के चल रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, चित्रण कर रहा है परमेश्वर की ओर से दिए गए अधिकार का, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए, रिप्रेजेंटेटिव। और मैं वहाँ पर रहूँगा और जैसा मूसा ने यहोशू से कहा वैसा ही हुआ। और ये यहोशू ने अपने साथ में कुछ लोगों को लिया, वे लोग लड़ने चले गए अमालेकी लोगों से, लेकिन मूसा के साथ हारून और हूर एक दूसरा जन है वहाँ पर, ये लोग 10-11 पद में एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके वहाँ से नीचे युद्ध को देख रहे हैं। लेकिन जब युद्ध को देख रहे हैं 11 पद में एक बड़ी विचित्र बात होती है, जब मूसा का हाथ ऊपर है तब तक इसराइली लोग जीत रहे हैं, जब मूसा का हाथ नीचे हो जा रहा है तो अमालेकी लोग जीतने लगते हैं। नाउ ये बहुत ही जटिल नहीं है बात आपको हमको समझने के लिए कि अमालेकी लोग पहले ही से ये वहाँ पे वो जाति ऐसी है जिनका काम ही है लड़ाई झगड़ा करने का। ये लोग शायद सोच रहे होंगे कि इसराइली लोग आकर के अब हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, चारागाहों पे कब्ज़ा कर लेंगे, पानी पीने के स्रोतों पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसलिए वो इसराइलियों को वहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन जब वापस इसराइलियों को लड़ते हैं, उनके लड़ने में शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके द्वारा प्रभु जी दिखा रहे हैं कि मैं तुमको इस योग्य बना रहा हूँ कि तुम शत्रुओं के सामने खड़े हो सको। वर्सेस 11 एंड 12 जस्ट मेक इट वेरी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि मूसा के हाथ में जादू है, ऐसा नहीं है कि मूसा के हाथों से जादुई किरणें निकल रही हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चिन्हात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से, आई मीन इन अ वेरी सिम्बॉलिक मैनर, ये दिखा रहा है कि मूसा परमेश्वर की ओर से प्रभु पे भरोसा करते हुए अपने लोगों को युद्ध में भेज रहा है, और परमेश्वर है जो सुरक्षा को उनके लिए उपलब्ध करा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा इनको पराजित करने के लिए द्वारा, इनको शक्ति प्रदान करेगा अपने लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे 11 पद में तो हो कह रहा है, हाथ उठाने वाली बात है। अगर आप पीछे भी जाएंगे, अगेन जब आप जाते पीछे 12-14 अध्याय में देंगे तो 12 देखेंगे, 14 अध्याय में उसका 16 पद में परमेश्वर कहते हैं तो अपनी लाठी उठा समुद्र के ऊपर बढ़ाकर, हाथ बढ़ा करके। 14 अध्याय के 21 पद में मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया, ये जब लाल समुद्र को पार करना है, हाथ बढ़ाया, ठीक है। इसी बात को आप आगे देखेंगे 26 पद में, 14 अध्याय के 26 पद में यहोवा ने मूसा से कहा समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा करके। ये फिर से ये जो भाषा है, लाठी और हाथ, ये दोनों परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के प्रोविजन, प्रावधान, परमेश्वर के इंटरफेरेंस, परमेश्वर उसमें सम्मिलित हो रहा है, परमेश्वर उसमें दखल डाल रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, हिज इन्वॉल्वमेंट, उसका इंटीमेट इन्वॉल्वमेंट, वो शामिल है, सम्मिलित है इस घटना में। ये दिखाने का तरीका है, मूसा के हाथ में ताकत नहीं है, मूसा के लाठी में ताकत नहीं है। इट्स रिप्रेजेंटिंग परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड एक तरह से जब पुराने समय जब लोग युद्ध करने आते थे तो आगे आगे युद्ध जो सेना होती थी, सेना के आगे एक या दो सैनिक लोग चलते थे या घोड़े पर चलते थे, तो और सामने एक बड़ी सा डंडा लेके चलते थे, और डंडे के ऊपर एक ध्वजा, एक पताका, एक झंडा हुआ करता, बैनर, एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, एक दिखाने के लिए एक उनके चिन्ह हुआ करता था किस राज्य को वो प्रतिनिधित्व करें, किस राजा की ओर से हैं वो, किस कौन से लोग हैं वो, कौन सी प्रजाति के लोग हैं, और उनकी सेना को दिखाया जाता, प्रदर्शित किया जाता। और उन युद्धों में, दोनों युद्ध में, जब तक दोनों उनका युद्ध समाप्त कब नहीं हो जाएगा, जब तक कि एक सेना का वो जो वो पताका है या ध्वज है या झंडा है या स्टैंडर्ड है, वो जब तक गिर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इन अ सेंस, एक मायने में यहाँ पे मूसा जो है परमेश्वर के ध्वज को, झंडे को, बैनर को ऊंचा उठा करके रखा है। और कई बार लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे 11 पद में क्या हो रहा है, मूसा प्रार्थना में हाथ को ऊपर उठा के रखा है। पॉसिबली, संभव है, क्योंकि पुराने नियम में हम अक्सर कई बार देखते हैं इसराइली लोग हाथ उठा करके प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। भजन संहिता 63 साम 63 वर्स 4 में आप यही बात देखेंगे, अनेक कई पद हैं, मेनी वर्सेस, हाथ उठा करके। तो चाहे प्रार्थना कर रहा है मूसा, चाहे चिन्हात्मक रीति से दिखा रहा है कि वो परमेश्वर के पताके को, झंडे को, स्टैंडर्ड को, सिग्निया को ऊपर उठा के रखा है। द पॉइंट इज, मुख्य बात यह है कि यहोवा परमेश्वर का कार्य हो रहा है, परमेश्वर है जो कार्य कर रहा है, परमेश्वर पे ये लोग भरोसा कर रहे हैं, अपनी शक्ति में नहीं, अपनी शक्ति में नहीं। ये यहोशु और उसके सैनिकों की ताकत नहीं है। इट्स नॉट, प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, सुरक्षा जवानों से नहीं आती है, सुरक्षा सैनिकों से नहीं आती है, सुरक्षा यहोवा से आती है। मूसा अपने हाथों, उसके हाथ जब तक खड़े हैं वो प्रार्थना में लगा हुआ है, या ऊँचे उठा करके वो दर्शा रहा है अपने झंडे को, तब तक तो लोग जीतते हैं, अन्यथा लोग नीचे हारने लगते हैं। इसलिए 12 पद में उसके लोग सहायता देते हैं। एंड अंततः 13 पद में यहोशू ने उनको पराजित कर दिया, अंततः 13 पद में। पूरे दिन युद्ध चला सूर्यास्त होते तक की, लेकिन धीरे धीरे फाइनली 13 पद आते आते हैं परमेश्वर ने उनको पराजित किया। नाउ इन ऑल दिस आप खुद आप सोचिए, स्वयं आप पढ़े, जब अभी ये जानबूझ के छोटी सी घटना एकदम सही है, मिस्र देश से निकाल तो दिया गया इनको, फिरौन के चंगुल से छुड़ा तो दिया गया, एक्सोडस हो गया, निर्गमन हो गया, लाल समुद्र पार करा दिए, वो काम परमेश्वर ने किया था, ही डिड इट, गॉड डिड इट। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 14:14, 14 निर्गमन 14:14, यह हुआ तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहना। जब लाल समुद्र पार करना था, जब मिस्रियों को हराना था, यहोवा ने काम किया संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से। जब यहाँ अमालेकी लोग यहाँ पे आए हैं तो यहोवा अवश्य सामर्थ्य दे रहा है, यहोवा अवश्य इनको शक्ति प्रदान कर रहा है, यहोवा अवश्य विजय का उनका स्रोत है, इज़ द सोर्स ऑफ द विक्ट्री, बट दे मस्ट डू, उनको भी लड़ना है और उनको एकता में होकर के लड़ना है, एकता में होकर के एक नए समुदाय के रूप में, वन न्यू पीपल ऑफ गॉड। तो इस घटना में व्हाट्स हैपनिंग इन दिस स्टोरी, परमेश्वर अपने लोगों को बाहर लेकर के आ रहा है एंड वो उनको एक नए लोग बना रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ न्यू पीपल। इन लोगों में एकता पाई जानी चाहिए, इनका छुटकारा हो गया है, लेकिन कनान देश में प्रवेश करने के लिए इनको विभिन्न परीक्षाओं में से होकर जाना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ ट्रायल्स। उन परीक्षाओं में इनको एक समुदाय, एक परिवार, एज अ फैमिली, एज अ पीपल ऑफ गॉड यूनाइटेड, साथ में एक होके इनको उनका सामना करना पड़ेगा। जब अमालेकी लोग आए, इंटरेस्टिंग रोचक बात है, ये लोग भागे नहीं, भागे नहीं, वे लोग खड़े होके लड़े, एंड दैट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी शुरुआत है। तो एक तरह से यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो, अगर हम नए नियम में आकर के हम चित्रण की बात करें, हम सिंबॉलिकली चिन्हात्मक रूप से मसीहों का, विश्वासियों का, प्रभु जी जो उद्धार का काम है, जो छुटकारे का काम है, प्रभु जी संपूर्णता से पूरी तरह से करते हैं उद्धार काम है, लेकिन मसीह जीवन बने रहना, आत्मिक युद्ध में लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु वो भी हम परमेश्वर की ओर से प्रतिदिन अपने जीवन में लड़ते रहेंगे, प्रतिदिन प्रगति करते रहेंगे। एंड वही चीज़ यहाँ पे कुछ हो रही है, अमालेकी लोग छुटकारा हो गए हैं, मिस्र देश से निकाले गए हैं, फिरौन की सेना को हराने के लिए परमेश्वर ने स्वयं युद्ध किया है, तुम शांत रहो, तुम परेशान रहो, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे, और उनको पराजित किया है। लेकिन अब जब अमालेकी लोग उनके सामने आते हैं, इनको एकजुट होकर के, जो भीतर में इनके पहले कुड़कुड़ाहट थी, भीतर में इनके अंदर आपसी में मतभेद हो रहा था, मूसा से लड़ रहे थे, हारून से लड़ रहे थे, अब जब इनके बाहर से इनके ऊपर हमला होता है, जब बाहर से इनके ऊपर आक्रमण आता है, बाहर से इनके ऊपर समस्या आती हैं, तो उनमें इनको एक होना है और प्रभु की दुहाई देना है और प्रभु की ओर नजरें लगानी है, प्रभु की ओर हाथ उठाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु भरोसा करते हुए साथ में मिल करके इनको युद्ध करना है। जब ऐसा होता है तो वे लोग पराजित किए जाते हैं। एंड 14 से लेकर के 16 पद वेरी इंटरेस्टिंग, फिर से बड़ी रोचक बात है यहाँ पे। प्रभु जी यहाँ पे बेसिकली अमालेकियों के लिए एक तरह से यहाँ पे श्राप की बात की जा रही है। ये वे लोग जो लोग सोच रहे थे हम प्रभु के लोगों को नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे, उनका स्वयं तक नाश किया जाएगा, स्वयं उनका नाश किया जाएगा। वह 16 पद के अंत में स्वयं यहोवा निस्सी, यह हुआ जो हमारा सहायक है, जो हमारा गढ़ है, या जो हमारा ध्वज है, जो हमारा परचम है, ना जो हमारा पताका है, द सिग्निया, जो हमारा बैनर है, स्टैंडर्ड है, यहोवा निसी, वो यहोवा अंत की पीढ़ी से पीढ़ी तक अमालेकियों से लड़ेगा। जिसी ना परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े होने के परिणाम अत्यंत भयंकर हैं। क्यों भयंकर है? क्योंकि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, अगेन एंड अगेन वी सेड दिस थिंग बिफोर, हम पहले ही बात कर चुके हैं, अदन की वाटिका से ही यह युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, दिस बैटल हैड स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, गार्डन ऑफ ईडन, सीड ऑफ द सर्पेंट, सर्प का बीज, सीड ऑफ सर्पेंट, स्त्री का बीज, सीड ऑफ द वुमन, ठीक है, आगे चलकर कैन एंड एबल, कैन और हाबल, कैन और हाबल, फिर आगे चल के हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, और आगे जब बताएं हैं याकूब और ईसाव, और फिर हम जैसे बताएंगे मिस्र देश और इज़राइल, और फिर इज़राइल जो परमेश्वर के लोग हैं, फिर उसके बाद अलग लोग, अमालेकी लोग, कनानी लोग, अलग अलग तरह के लोग, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के जो लोग नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं वे अलग अलग रीति से परमेश्वर के लोगों को नाश करने का प्रयत्न करेंगे, उस बीज को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो समय पर समय लगेगा, अरे समय पर समय लगेगा ये लोग जीत गए हैं, दे वन। बार बार लगेगा, बार बार ऐसा प्रतीत होगा कि जो शत्रु है वो विजयी हुआ है, शत्रु ने उसकी योजना संपूर्ण पूरी हो रही है और वो परमेश्वर के लोगों का नाश करने में सफल हो रहा है, पराजित कर रहा है। इट सीम्स लाइक दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। परमेश्वर, परंतु परमेश्वर अपनी बुद्धि में होकर के अपने लोगों को बचाएगा, एंड ही ऑलवेज हैज़ अ रेमनेंट, हमेशा अपने बचे हुए लोगों को बचा के रखा, विश्वासियों के लोगों को बचा के रखता है। ना सिर्फ उनको बचा के रखेगा बल्कि जो लोग उसके लोगों का नाश करने का प्रयत्न करते हैं उनका स्वयं का नाश होता है, दे देमसेल्व्स आर डिस्ट्रॉयड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर इन चैप्टर 17 वर्सेस 8-16। तो हमने यहाँ पे देखा जब ये लोग एक होकर के, एकता में होकर के इन बाहरी आक्रमण से इनको लड़ना है, अपने अपने समुदाय के लिए खड़े होना है, अपने समाज के लिए, अपने प्रभु के लोग हैं ये लोग, इसलिए इनको परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के जो छुड़ाए हुए लोग हैं इनको परमेश्वर के स्थान पे कनान देश में जाने के लिए इनको प्रगति करना है, बढ़ते रहना आगे। लेकिन साथ में फिर उसके बाद एकदम से 18 अध्याय में एक दूसरी घटना आती है, यहाँ पर दूसरी घटना आती है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कई लोग जब 18 अध्याय को पढ़ते हैं they just run in many different directions। तो यहाँ पर 18 अध्याय में क्या हो रहा है, अभी अमालेकियों को पराजित किया इन लोगों ने, जस्टिफाइड इन लोगों को अमालेकियों को। देन वर्स चैप्टर 18 में मूसा का जो ससुर है यित्रो, यित्रो आता है और ये मिद्यानी है, ये मिद्यानी है, चाहे 18 अध्याय उसके पहले पद में, ना सिर्फ ये मिद्यानी है ये, लेकिन ये मिद्यान का याजक है, प्रीस्ट है, ठीक है। ये मिद्यानी लोग इसराइली नहीं है, ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये सत्य को नहीं जानते हैं, बल्कि एक्चुअली हम जब आगे चलेंगे तो गिनती उसके 25वें अध्याय में और निर्गम और अन्याय उसके 6 अध्याय 7 अध्याय में गिदोन की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं मिद्यानी लोग बहुत परेशान करते हैं इसराइलियों को आगे चल करके। परंतु फिलहाल यहाँ एक मिद्यानी है जो कि कौन है, मूसा का ससुर है। और आपको याद है जब मिस्र थे, जब मूसा को पानी से निकाला गया था, फिरौन की बेटी ने उसको रख लिया था, उसकी देखभाल कर रही थी वो, और फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा अरे मिस्री लोग तो मेरे भाई लोग जो कि इब्री लोग हैं, इसराइली लोग हैं, उनको उनकी प्रताड़ना करते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं। तो उसका खून खोला और उसने जब देखा कि एक मिस्री एक हिब्री को, मतलब उसके भाई को मारा, तो उसने उसको जान से मार दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो यहाँ पे जो घटना हो रही है 18 अध्याय में, फिरौन ने मूसा ने अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को कुछ समय पहले वापस मिद्यान भेज दिया है, वो लोग मिद्यान में हैं। और अब मिद्यान में रहते हुए यित्रो ने इन सारी घटनाओं को सुना है, किन घटनाओं को, प्रभु जी क्या कर रहे हैं। फिर सुनने के बाद इससे मिलने के लिए उसकी पत्नी और उसके बच्चों को, दोनों बेटों को लेकर के यित्रो वापस आता है मूसा से मिलने के लिए। सो जब ये जो घटना यहाँ पे हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 अध्याय में शुरुआत में आरंभ में इट्स वेरी क्लियर, जब मूसा के ससुर अर्थात मिद्यान के याजक यित्रो ने ये सब सुना, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया था वो पराक्रमी काम था, समथिंग नेवर हैपन बिफोर, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ। मिस्र देश को पराजित कर दिया, किसने पराजित किया, ऑर्डिनरीज आम लोगों ने, कौन, इसराइली लोग, जो संसार की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है उसको सबसे शक्तिहीन दासों ने पराजित कर दिया, बिना किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग करें, बिना किसी सेना का। तो ऑफ कोर्स ये बात सब जगह फैलेगी, तो उस रीजन में, उस क्षेत्र में अलग अलग देश के लोग, अलग अलग जाति के लोग, उन्होंने सुना होगा यहोवा परमेश्वर ने कैसे मिस्र देश को ना से पराजित किया, इसराइलियों को मिस्र से निकाला, उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग में बांटा, ये सारी कथाएं, घटनाएं, गाथाएं लोगों तक पहुंच चुकी हैं, अलग अलग तक, मिद्यानों तक भी पहुँची है। उसको सुनने के बाद 18 अध्याय में ये आता है अपने दामाद से मिलने के लिए। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन चैप्टर 18। यहाँ पे आया, अपने पुत्र को लेकर के आया, और जहाँ पे पांचवें पद में, 18 अध्याय के पांचवें पद में, जहाँ पे लोग डेरा डाल के बैठे होते हैं इसराइली लोग, वहाँ पे आकर के उसे भेंट करता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ, कई सिमिलैरिटीज़ हैं पिछली घटना से और इस घटना में। पिछली घटना में भी अमालेकी लोग मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, जाँचने के लिए आए थे, उन्होंने भी सुना था। यहाँ भी इन लोग ने सुना है और ये लोग भी आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन उनका प्रत्युत्तर दूसरा है, अमालेकियों का, यित्रो मिद्यानी का प्रत्युत्तर दूसरा है, भिन्न है, फ़र्क है। यहाँ पांचवें पद में ये लोग यहाँ पे डेरा डाले हैं पर्वत पे, परमेश्वर का पर्वत। जितनी बार परमेश्वर का पर्वत आएगा पुराने नियम में, उतनी बार आपको सामने आना चाहिए, होरेब पर्वत की बात कर रही है या सीनै पर्वत की बात कर रही है, अलग अलग शब्द हैं लेकिन एक ही जगह की बात की जा रही है, उसी रीजन में, उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में। वहाँ पे आकर के पहले 18 अध्याय के पहले पद से लेकर सातवें पद में यहाँ पे वापस आकर के भेंट करते हैं ये लोग इस घटना में। उसने सुना है इसके बारे में, शब्द फैल गए हैं, परमेश्वर के कार्यों के बारे में सुना है, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए उसके बारे में मिद्यानी लोग जान गए हैं, यित्रो भी जान गए, और वह उससे आकर के भेंट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और इसी और सातवें पद में मूसा फिर जाकर के उससे मिलता भी है। देन जब वो मिलता है, जब मूसा मिलता है मूसा, तो पहले पद से लेके सातवें पद में आते हैं, आठवें पद से लेके बारह पद में मूसा बेसिकली रिकाउंट करता है, पुनः बताता है, वर्णन करता है, बतलाता है प्रभु जी ने क्या क्या किया, गवाही देता है, यहाँ पर गवाही देता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक टेस्टिमनी, एक तरह से इवेंजलिज्म कर रहा है, एक तरह से सुसमाचार प्रचार का काम कर रहा है, वो बता रहा प्रभु ने किया क्या है। सो यू सी दैट, सो जितनों ने पहले खुद सुन लिया, अमालेकी ने इसराइलियों को देखा तो उनको नाश करने का प्रयास किया उन्होंने, उनका नाश हो गया। यित्रो ने सुना प्रभु जी ने क्या किया तो वो मूसा के पास आया, जब मूसा के पास आया तो आठवें पद से आगे मूसा ने बैठा करके यित्रो को सब कुछ बता दिया। इट्स अमेजिंग ना, राइट वर्स 8 में वो सब बतलाया, कुछ नहीं छोड़ा उसने, उसने शुरू से कहानी बताना शुरू किया, अरे ससुर जी आपको क्या बताएं हम, ऐसा ऐसा हुआ, जब हम भेड़ चला रहे थे, जब हम जंगल में थे तो हमने आग झाड़ी को जलते हुए देखा, आपको तो मालूम है जब हमने जलते हुए झाड़ी को देखा था, और तब हमने आवाज़ सुनी थी और तब हमको भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु जी ने ये ऐसे ये सब किया है। और आठवें पद में मूसा ने सब कुछ बताया, और साथ ही साथ तो उसने पराक्रम के बारे में बताया, उसने प्रभु के बड़े कामों के बारे में बताया, उसने प्रभु के महान हाथ का वर्णन किया कि कैसे प्रभु जी का के हाथ बलशाली हैं, कैसे उसने मिस्रियों का नाश किया, उसने वो सब, ही स्पोक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट ही ऑल्सो स्पीक्स अबाउट व्हाट एल्स। वर्स 8 के बीच में उसने सब विपत्तियों का भी वर्णन किया, उसने विपत्तियों का, उसने बताया उद्धार हो गया लेकिन छुटकारा हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि जीवन सरल है। यित्रो के सामने वो झूठ नहीं बोला, फेंक नहीं रहा, वो कह रहा है जो प्रभु पीछे चलता है उसका बाल भी बांका नहीं होता है, है ना, यहाँ पे बीमारी नहीं फटकती है, यहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। नो, ही मेंशंस इट ऑल। चैप्टर 18 के वर्स 8 के बीच में उसने सब विपत्तियों का वर्णन किया जो अभी तक उन पर, अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं यात्रा के, लेकिन इस बीच में ही काफ़ी हो चुकी हैं विपत्तियाँ, काफ़ी हो चुके हैं, भीतर से बाहर से। भीतर लोगों में कुड़कुड़ाना है, लोगों के अंदर भरोसा नहीं प्रभु के ऊपर, अपने अगुओं पे भरोसा नहीं करें, विद्रोह की भावना है, परमेश्वर के प्रावधान पे उनको उनका उनको शंका है, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है, धन्यवादी नहीं है, बातों को भूल जाते हैं, स्पिरिचुअल एमनीजिया है, आत्मिक भुलक्कड़पन है, प्रभु ने उनके लिए जो भले भले काम किए वो भूल जाते हैं, जैसी समस्या आती है तुरंत पलट जाते हैं, जब ठीक रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हल्की समस्याएं तुरंत भड़क जाते हैं, क्या फ़ायदा। सो मोसेस रिकाउंट्स ऑल दैट, सब कुछ मूसा बताता है, और लेकिन 8 पद के अंत में इन सब के बीच में मूसा ये बताता है कैसे प्रभु जी की दया बनी रही है, कैसे उसने यह कैसे उनसे यहोवा ने उन्हें छुड़ाया था। नोटिस मोसेस, मूसा ये नहीं कहता है तुम नहीं जानते ससुर जी, बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं क्या बताऊँ, प्रभु जी की दया से मैं अगुवाई ठीक से कर लेता हूँ और इनको संभाल के रखा हूँ। ही नेवर सेज दैट, वो वाहवाही नहीं ढूंढ रहा है। He gives credit, वो श्रेय देता है परमेश्वर को। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत नेसेसरी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई मसीह लोग क्या करते हैं, मसीह लोग कई बार भूल जाते हैं कि सब कुछ को देने वाला परमेश्वर है और छोटी छोटी बातों में क्रेडिट पाना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में श्रेय देना पाना चाहते हैं। और कई बार बोलेंगे ऐसे जैसे उनको श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से बोलेंगे उसमें भी श्रेय ढूंढेंगे, कहेंगे नहीं 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 मेरी तारीफ मत करी, मेरी तारीफ मत करी, लेकिन फिर धीरे धीरे कहेंगे हाँ करते रहिए है ना, कहेंगे क्या, फिर आप कहेंगे वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने क्या काम किया मेरे द्वारा। तो प्रभु के बारे में नहीं बात कर रहा लेकिन वो बताने उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में क्या हुआ है। हम लोग बड़े विकृत लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, ट्विस्टेड पीपल वी आर एक्चुअली। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी आप की बड़ाई, अपने आप को ऊँचे पर उठाना चाहते हैं। एंड गॉड हेट्स दैट, परमेश्वर इस बात से घृणा करता जब उसके लोग उसकी महिमा में कुछ चुराने का प्रयास करते हैं। परंतु जब सही तरीके से सुसमाचार का प्रचार या परमेश्वर के कार्यों का वर्णन किया गया, सच्चाई को बताया गया, सब कुछ का वर्णन किया गया, तो क्या हुआ, नवे पद से आए गए। यहाँ पे विटनेस हो रहा है, टेस्टिमनी की जा रही है। 9 पद से लेके 12 पद में इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि यह यित्रो जो कि मिद्यानी है वो क्या कर रहा है, 9 पद में, इसने तो नहीं अनुभव किया ना कुछ, ही हैजंट सीन एनी ऑफ दैट। क्या यित्रो था जब मिस्र देश से बाहर निकाला जाता, ही वाज़न्ट देयर, उसने नहीं देखा, उसने अनुभव नहीं किया, लेकिन येट फिर भी वो उनकी गवाही पे विश्वास करता है, भरोसा करता है इन लोगों की गवाही पे, है ना। और वो क्या करता है, नौ पद के अंत में वो आनंदित हुआ, वो धन्यवाद करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, उसकी आराधना करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। आई मीन दिस इज़ द राइट रिस्पॉन्स, ये है सही प्रत्युत्तर। उसके अंदर जलन नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है, वो कहता है तो मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे के साथ तो नहीं हुआ। नहीं, वो परमेश्वर के कार्य के बारे में सुन करके, परमेश्वर ने जो भलाई किए हैं इसराइलियों के साथ, और ये इसके लोग भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आनंदित होता है, 10 पद में उसकी स्तुति करता है, आराधना करता है और कहता है प्रभु महान है जिसने फिरौन और मिस्रियों के वश में छुड़ाया। एंड वर्स 11 में यहाँ पे एक तरह से, एक मायने में उसका कन्फेशन, उसका प्रोफेशन, उसका अंगीकार दिखाई देता है 11 पद में, मानो जैसे कि वह सत्य को ना सिर्फ उसने सुना है, ना सिर्फ उसने जाना है, लेकिन अब वो उसको मुँह से बोल भी रहा है, उस पर विश्वास कर रहे हैं 11 पद में। वो कहते प्रभु जी मैं जानता हूँ, अब मैं जान गया हूँ, यहोवा सब देवताओं में महान है, यहोवा के तुल्य कोई नहीं है, यहोवा बाइबल का परमेश्वर अनोखा परमेश्वर। जब ये कह रहा है इस बात को, तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि मिस्र देश के ईश्वरों से भी महान है, मिस्र देश के राजा से महान है, और मिद्यानी देवताओं से भी महान है। यहोवा परमेश्वर, बाइबल परमेश्वर, मिद्यानी देवताओं से भी महान है, क्योंकि वो ही सच्चा यहोवा परमेश्वर है। मैं जान गया हूँ कि यहोवा परमेश्वर सब देवताओं महान है, वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। एंड देन वर्स 12 में ना सिर्फ वो मुँह से अंगीकार करता है इस बात को, ना सिर्फ वो स्तुति करता है, आराधना करता है, लेकिन 12 पद में ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे एक आराधना के कार्य में, बलिदान का कार्य भी वो करता है। एंड उसके साथ ही साथ 12 पद में, 18 अध्याय के 12 पद के अंत में, ना सिर्फ यित्रो, लेकिन यित्रो के साथ इसराइल देश के पुरनिये एल्डर्स जो अगुए हैं, वह सब लोग मिलते हैं और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में भोजन करते हैं। एक तरह से वाचा बांध रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक तरह से मित्रता को और पुख्ता कर रहे हैं, एक तरह से, एक मायने में ये फोरशैडो कर रहा है, आगे की ओर इशारा कर रहा है प्रभु भोज में। एक तरह से ये लोग पासओवर मना रहे हैं, एक तरह से फसह का पर्व मना रहे हैं, एक तरह से, एक रीति से यहोवा परमेश्वर ने छुड़ाया है, यहोवा परमेश्वर ने मुक्ति दी है, यहोवा परमेश्वर के हाथ महान है, उसकी प्रशंसा में उसको बलिदान चढ़ाते हैं वो लोग, होम बलि और मेल बलि, ना सिर्फ उसकी प्रशंसा में, उसका धन्यवाद में कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए, इस बात को अंगीकार करते हुए कि यही यहोवा परमेश्वर है, कोई और हमारे बलिदान के योग्य नहीं है, फिर उसकी उपस्थिति में उसके सामने साथ में मिल करके उसके कामों को स्मरण करते हुए भोज करते हैं लोग। एंड बार बार भोज भोजन साथ में एकता को, साथ में निकटता को, साथ में समर्पण को, वाचा को दर्शाता है। यही इसी तरह की प्रक्रिया कुछ आगे चल के 24 अध्याय उसके 8 पद से 11 पद में दोबारा इज़राइल के लोग करते हैं, 24 अध्याय में 8 पद से 11 पद में। तो 18 अध्याय के पहले पद से लेकर 12 पद में, 18 अध्याय के पहले पद से लेकर 12 पद में यित्रो का आना होता है, यित्रो का सच्चाई का जानना होता है, यित्रो का सच्चाई पर भरोसा करना होता है। पर देन उसके बाद इंटरेस्टिंगली, फिर उसके बाद जब अगले दिन बैठा हुआ है यित्रो 13 पद से आगे, तो यित्रो कुछ यहाँ पे कुछ देखता है। 13 पद से लेकर 16 पद में यित्रो को एक समस्या दिखाई देती है। यित्रो यहाँ पे देखता है कि मूसा जब न्याय का कार्य करता है, अब ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, दीज आर द पीपल ऑफ गॉड, अभी इनको व्यवस्था नहीं दी गई है, मीन इन द ओल्ड टेस्टमेंट पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत अभी इनके पास व्यवस्था नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोग हैं, इनको अपने सामुदायिक जीवन को संचालित करना है। नाउ रिमेंबर दिस, इस बात को ध्यान रखिएगा, पुराने नियम में इसराइली लोग एथनिक नस्ल, एक नस्ल, एक जाति के लोग थे, यहूदी इसराइली लोग थे, हिब्रू इब्री लोग थे, ये लोग एक जाति के लोग थे, एंड इट वाज अ थियोक्रेसी, ये ईश्वर तंत्र था, इट वाजंट अ डेमोक्रेसी। हम लोग के समय में डेमोक्रेसी, हम जिसको चाहें इसे राजा बना लेते हैं, उस समय जिसको चाहे राजा नहीं बन सके, परमेश्वर इनका राजा था, परमेश्वर के अधीनता में इनको जीवन व्यतीत करना था, परमेश्वर ने इनको निकाला था, यह परमेश्वर के लोग हैं, एज अ पीपल ऑफ गॉड, नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट एन इंडिविजुअल, खाली एक जन नहीं, परमेश्वर हमेशा एक जन को नहीं, एक समाज को बनाता है, इज मेकिंग अ पीपल नॉट एन इंडिविजुअल, इस बात को समझिए, इस बात को दिमाग अपने, God is creating a people always from the beginning, since the beginning, very beginning. लोगों को, individual को इस्तेमाल करता है अगुवाई करने के लिए, जैसे मूसा को इस्तेमाल कर रहा है, यहोशू को इस्तेमाल कर रहा है, हारून को इस्तेमाल कर रहा है, परंतु वे सब लोग मिलकर के समाज को दृढ़ कर रहे हैं। एंड ये जो थी अंडर दिस थियोक्रेसी, ईश्वर तंत्र के अधीनता में परमेश्वर राजा है, परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है समाज में उठने बैठने के लिए कुछ कुछ नियमों का पालन करना है। जब 10 तरह के लोग होंगे तो 10 तरह की बातें होंगी, 10 तरह की बातें होंगी तो उनके बीच में प्रावधान करने के लिए परमेश्वर कुछ उपलब्ध कराता है न्याय के कार्य को करने के लिए, न्याय के कार्य को करने के लिए। सो व्हाट हैपेंस वर्सेस 13-27 अक्सर लोग लेते हैं, और उसको लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए लोग लेते हैं। यहाँ पे डेलीगेशन की बात करें, कार्य को सौंपने की बात करें, बांटने की बात करें, अक्सर ऑफन पीपल थिंक दैट, ये डेलीगेशन, ये लीडरशिप मैनुअल नहीं है, ये जो खंड है, दिस इज नॉट अबाउट लीडरशिप। नाउ वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट, बट इट इज़ नॉट प्राइमरली अबाउट दिस। ये नेतृत्व के बारे में नहीं है, यद्यपि हम नेतृत्व के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, डेलीगेशन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिम्मेदारी को बांटने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी के बारे में नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस पैसेज, को लेंगे, ओह तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अच्छा हमको लीडरशिप कैसे करना है, हमको लोगों को तैयार करना है और लोग तैयार करके उनको जिम्मेदारी बांटे। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, वो इंसिडेंटल, वो सेकेंडरी है, वो टर्शरी बात है, मुख्य बात नहीं है, वो प्राथमिक बात है। जो प्राथमिक बात ये है, प्राथमिक बात ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए न्याय को उपलब्ध कराता है समाज में, परमेश्वर अपने लोगों के समाज में शांति को बनाए रखने के लिए, उनके उनके उठने बैठने का भी प्रभु जी चिंता करता है, उनके प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कराता है, उनके लिए खाने के लिए मन्ना देगा, जब उनको मांस खाना तो बटेर देगा, जब उनको मीठा पानी चाहिए तो उनको देगा, जब उनको पानी चाहिए तो चट्टान से प्रावधान करेगा, और साथ ही साथ में उनको अगुवे प्रदान करता है, उनको प्रतिदिन में उनके उठने बैठने के लिए समाज में संचालन सही ढंग से होने के लिए, एज अ पीपल ऑफ गॉड टू बिहेव राइटली, परमेश्वर के लोग होने के नाते, क्योंकि प्रभु जी इनको अपने लोग बनाए ताकि, क्यों, क्योंकि दूसरे लोग इनको देखेंगे, किस तरह के लोग हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज, दूसरे लोग इनको देखेंगे, कनानी लोग देखेंगे, इसराइली मिस्री लोग देखेंगे, हित्ती लोग देखेंगे, अलग अलग जाति के लोग इनको देखेंगे और कहेंगे किस तरह के लोग हैं, इनके बीच में अस्त व्यस्तता नहीं है लेकिन इनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन है, खेओस नहीं है, खेओस नहीं है, ये लोग व्यवस्थित लोग हैं, इनके बीच में ठीक तरह से लोगों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे अन्याय नहीं है लेकिन न्याय है। अगर मूसा सही रीति से न्याय का काम नहीं करेगा तो समाज में अन्याय होगा। तो जो गरीब होंगे, जो निचले तबके के होंगे, जिनके पास आवाज़ नहीं है, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, उनके साथ बुरा होगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए, और परमेश्वर इस बात को और अधिक स्पष्टता से उपलब्ध कराने के लिए परमेश्वर यित्रो नाम के एक गैर इसराइली को उपयोग करता है इस बात को प्रस्तुत करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है अपने लोगों के लिए प्रावधान कराने के लिए। परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हैं, सीमित नहीं हैं, उसके पास कम विकल्प नहीं हैं। वो अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से अपने लोगों के लिए प्रावधान करा सकता है। वो मिस्रियों से अपने लोगों के लिए सोना और चांदी प्रावधान करा सकता है, धन संपत्ति प्रावधान करा सकता है, और फिर वो इस मिद्यानी से उनको बुद्धि प्रावधान करा सकता है कैसे अपने समाज को संगठित करना है। लेकिन इन सब के पीछे प्रावधान कराने वाला यहोवा परमेश्वर स्वयं है। यू गेट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो गॉड इज मेकिंग अ पीपल, परमेश्वर एक लोग बना रहा है, लेकिन उनको संचालित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, उनको आयोजित करने के लिए। अभी उनको आगे चल के व्यवस्था दी जाएगी, तो व्यवस्था के अनुसार उनका जीवन और भी अधिक संचालित हो जाएगा। लेकिन उसमें इससे पहले उनको व्यवस्था दी जाए, इससे पहले वो और भी अधिक संगठन में आए, प्रभु जी उनके लिए न्याय को उपलब्ध करा रहा है। सो वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स टू वर्स 27, इट्स वेरी सिंपल। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें इसमें सामान्य ज्ञान की बातें, कॉमन सेंस की बातें। मूसा दिन भर लगा हुआ है 13 पद से लेकर के 16 पद में, उनको उनके बीच में जो भी समस्याएँ हो रही हैं, क्योंकि इतने 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं, दिक्कत तो हो रही होगी, इसीलिए क्या हो रहा है, भोर से लेकर शाम तक लोग उसके पास आके खड़े हुए हैं, मूसा जी बताइए क्या करें, मूसा जिसने मेरी बकरी चुरा ली, मूसा जी इसने मेरे बेटे को मार दिया, मूसा जिसने मेरे खेत को काट लिया, मूसा जिसने मेरे पेड़ को चुरा लिया। आई मीन अलग अलग टाइप की बात है। एंड देन मोसेस इज वर्किंग थ्रू ऑल दैट। इसीलिए यित्रो कहता है कि भाई तुमको ये करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? कि कॉमन सेंस, सामान्य बात, समान बुद्धि की बात, कैसे करोगे तुम? तो फिर उसको 16 पद के अंत में मूसा बताता, भाई एक्चुअली मैं ये खाली न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली समाज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुख्य काम मेरा क्या है 16 पद के अंत में, मैं परमेश्वर की विधियाँ और उनको व्यवस्था बता रहा हूँ। दैट्स द मेन थिंग, जो मुख्य काम। मूसा यहाँ पे जज नहीं बन करके बैठा, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट बनकर नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे मूसा परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया प्रवक्ता है। ही इज द स्पोक्स पर्सन अपॉइंटेड बाय गॉड। किस लिए? लोगों क्या सिखाने के लिए? वॉट? खाली लड़ाई झगड़ा समाधान कराने के लिए थोड़ी ना है। उसका मुख्य काम क्या है? वॉट इज हिज मेन वर्क? वर्स 15 के एंड में, विधियाँ और व्यवस्थाएं सिखाने के लिए, द लॉ, द टीचिंग्स, परमेश्वर की जो जो शिक्षाएं हैं वो उनको सिखाने के लिए, वो उनको सिखाने के लिए। तो जो उसका, जो मूसा का जो जो ससुर है, यित्रो है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सामाजिक बुद्धि समझता है, तो कहता है अच्छा ठीक है, तुम करना चाहते हो बढ़िया करो, गलत बात नहीं है, मैं तुमको एक समाधान बताता हूँ। 17 पद में, तुम अकेले मत करो, ठीक ठाक नहीं है, तुम थक जाओगे, मुश्किल होगा, अकेले नहीं कर सकते हो, मैं तुमको सम्मति दे रहा हूँ। 19 पद में, और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा, तुम करो क्या, तुम प्रतिनिधि बन करके, रिप्रेजेंटेटिव, बाय रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधि बन करके इन लोगों की सहायता करो। और करो क्या फिर 20 पद में, फिर से तो कुछ लोगों को चुनो 20 पद में, इन्हें विधि और व्यवस्था सिखाओ, तो बजाय तुम खाली सिखाओ, तुम पाओ इन लोगों को, सबको सिखाओ। लेकिन सबको कैसे सिखाओगे? प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा। उनको क्या सिखाओगे 20 पद में? सेम चीज़, परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर क्या चाहता है, किस तरह से उठना बैठना, उसकी आराधना कैसे करना है। एंड वर्स 20 में ही आगे, और जिस जिस मार्ग पर उन्हें चलना है, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और जिस जिस कार्य को उन्हें करना है, उन्हें करना है क्या, किस तरह से खाना है, किस तरह से पीना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से आराधना करनी है, एवरीथिंग इन डिटेल, एवरीथिंग तुम इनको बताओ। लेकिन तुम जिन लोगों को रखोगे, उनके गुण क्या होने चाहिए, आई मीन इससे पहले कि तुम उनको अपॉइंट करो, पहले तुम उनको शिक्षा दो, पहले उनको शिक्षा दो, 17 पद से लगे 20 पद में उनको शिक्षा दो, उनको सिखाओ क्या उन्हें सिखाओ कि उन्हें क्या सिखाना है दूसरों को, उन्हें समझाओ, उन्हें बतलाओ, उन्हें बताओ। एंड देन वर्स 21, इससे पहले कि तुम किसी को अपॉइंट करो, किसी को निर्धारित करो, उनके चरित्र को देखो। 21 पद में किस तरह के लोग होंगे, जो गुणी होंगे। और गुण से यहाँ पे खाली यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके अंदर उनके वर्च्यूज की बात हो रही है, उनके व्यवहार की बात हो रही है, उनके चरित्र की बात हो रही है। जो सक्षम लोग हैं, लेकिन सक्षम किस मायने में, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। दूसरी बात 21 पद में, सच्चे लोग हों, ईमानदार लोग हों, प्रभु का भय मानते हों, सही को सही, गलत को गलत, धार्मिकता से प्रेम करने वाले लोग हैं। एंड ये लोग अन्याय से लाभ नहीं लेते, मतलब घूस ना लेने वाले लोग हैं लोग, है ना, टेबल के नीचे काम करने वाले लोग नहीं हों, टेढ़ा मेढ़ा करने वाले नहीं काम हों, ये लोग ईमानदार हो, इनका चरित्र ठीक लोग। और फिर ऐसे लोगों को नियुक्त कर देना तुम्हारा काम करने का। तो यही बात मूसा को यित्रो बोलता है। फिर उसके बाद 24 पद से लेकर 27 पद में मूसा ऐसा करता है, अपने समाज को संभालने के लिए। लेकिन यित्रो की सलाह में, मूसा के द्वारा यित्रो की सलाह को मानने में, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक उत्तम समाज में न्याय का प्रावधान कर रहा है। यू सी दैट? सो इट्स नॉट जस्ट, ये परमेश्वर के काम को हम अद्भुत रीति से देख रहे हैं। क्यों जरूरी है? अगर न्याय नहीं होगा समाज में, तो समाज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बिखर जाएगा। समाज में क्या होगी? एकता नहीं होगी। समाज में क्या होगी? विघटन होगी। फिर अगर दोबारा अमलेकी लोग आएंगे, या फिर अगर अमलेकी के जैसे कोई और आएगा, तो क्या ये लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे यहोशू के साथ जाकर के? ये लोग क्या कहेंगे? पिछली बार जब बंटवारा हुआ तो हमारा साथ दिया था तुमने, हम कहाँ जाएं? तुम्हारे घर वालों को पकड़ा गया, तुम जाओ। नहीं, परमेश्वर क्या कर, अपने लोगों को एक बनाने के लिए, उनके जीवन में सिद्धांतों को, शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर प्रावधान का उपलब्ध करा रहा। ना जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, तो कई बार हम और आप सोचते हैं, अरे अच्छा ठीक है समझ आ गया, अच्छा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय को प्रावधान कराते हैं। अमलेकियों से उसने सुरक्षा किया और उसने प्रावधान किया है न्याय का, कि समाज में लोग उचित रीति से व्यवहार करें एक दूसरे से। समाज में लोग जो दबे तबके के लोग हैं, जिनके पास कम पैसा है, कम पढ़े लिखे हैं, कम पहुंच है, उनके साथ अन्याय ना हो। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो मूसा कहाँ कर पाएगा? अगर मूसा के पास असिस्टेंट होंगे, बहुत सारे सहायक होंगे, तो पॉसिबली पोटेंशियल ये है कि समाज में सबकी समस्याओं का उत्तर दिया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब फोरशैडो कर रहा है, ये सब आगे की ओर इशारा कर रहा है, ये सब दिखा रहा है, दर्शा रहा है दूर की ओर। ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, एक दिन, ये अभी एक छोटा सा चित्रण है, एक दिन प्रभु जी जब अपने लोग बनाएगा, और प्रभु जी अपने लोगों को आज यीशु मसीह के द्वारा मूसा से कहीं बड़े बेहतर उत्तम अगुए के द्वारा, जो यीशु मसीह है मूसा से बढ़कर के। आपको याद है अमालेकियों से जब लड़ते हुए, तो मूसा ने क्या किया? अपने हाथ को उठा करके रखा, जब तक अपने हाथ को उठाया है तो अमालेकियों के ऊपर न्याय हो रहा है, परमेश्वर का न्याय उतर रहा है। लगभग कई हज़ार साल के बाद हम देखते हैं मूसा से बढ़ करके, मूसा से कहीं उत्तम एक हमारा अगुआ है जो अपने हाथ को उठाता है। जब वो अपने हाथ को उठाता है तो वो न्याय को सहता है, वो न्याय को लेता है, नाश करने के लिए नहीं, लेकिन न्याय से बचाने के लिए। वो और फिर जब आपको मान, जब वो क्रूस के ऊपर, वो हमारा नायक, वो हमारा अगुआ, वो हमारा नया मूसा, वो हमारा मूसा से भी उत्तम निर्गमन को लाने वाला, नया निर्गमन जो लेकर के आया है, जो हमको मिस्र देश की गुलामी से, शारीरिक गुलामी से नहीं, लेकिन हमको पापों से, जिसने हमको छुड़ाया है, जिसने संसार से और शैतान के चंगुल से हमको छुड़ाया है, जो हमको नए राज में प्रवेश करा रहा है, वो हमारे लिए अपने हाथों को फैला करके प्रार्थना करता अपने लोगों के लिए, और हमारे अपने लोगों के लिए विनती करता है, अपने लोगों के लिए उनको न्याय, परमेश्वर के दंड के, परमेश्वर के न्याय से उनको बचाता है। मूसा को अपने लोगों की अगुवाई करने में दिक्कत हो रही थी, मूसा को अपने लोगों के बीच में न्याय को बांटने में समस्या होती, उसको सहायता की आवश्यकता है। हमारा जो प्रभु है वो मूसा से बढ़कर है, वो न्याय के साथ, उसको आवश्यकता नहीं सहायकों की। लेकिन जब हमने आज किसको पढ़ा इफिसियस का 4 अध्याय में, प्रभु जी ने क्या किया, जो हमारा प्रभु है, ये हमारा जो प्रभु है, ये दयालु परमेश्वर, इसने क्या किया, इसने इफिसियस के 4 अध्याय में मूसा को अन्य अगुओं को लाना पड़ा ताकि लोग न्याय को देख सकें। लेकिन ये जो हमारा प्रभु है इफिसियस के 4 अध्याय में उसके 9:10 वो क्या कर, वो पृथ्वी के निचले स्थान में उतरा, और फिर 10वें पद में वही जो उतरा था वही है जो सब आकाशों के ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। हमारा प्रभु आकाश के ऊपर विराजमान है, और फिर उसने क्या किया, उसने कलीसिया के लिए कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, और कुछ को पास्टर, और कुछ को शिक्षक नियुक्त कर दिया। उसने, प्रभु ने अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अ पीपल ऑफ गॉड, अ पीपल ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, परमेश्वर के लोग पुराने नियम में इसराइली लोग, परमेश्वर के लोग नए नियम में उसके कलीसिया, उस समय उनके लोगों के न्याय के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए, उनको विधियों को सिखाने के लिए, उनको व्यवस्था को सिखाने के लिए मूसा के साथ उनको अगुओं की आवश्यकता थी। नए नियम में आकर के प्रभु जी हमको कलीसिया में अपने शिक्षकों को देते हैं, क्यों देते हैं 12 पद में, ताकि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग बने और मसीह की देह आगे बढ़े, मसीह की देह आगे बढ़े। अगर आप देखेंगे यहाँ पे निर्गमन उसका 18 अध्याय में उसके 21 पद में, यहाँ पे मूसा से कहा गया, जित्रो ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को छांट लेना जो गुड़ी हों, जो परमेश्वर भय मानते हैं, जो सच्चे हों, अन्याय के लाभ से घृणा करते हों। पहले तीसरे अध्याय में कलीसिया के लिए जो अगुए दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लोगों में शिक्षा देने के लिए, परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर के राज्य को बने रहने के लिए, परमेश्वर के न्याय को पाए जाने के लिए, लोगों में एकता बने रहने के लिए, ताकि वे एक देह बन करके बढ़ते चले जाएं, एक परिवार में लेकर के मसीह में बढ़ते चले जाएं, उनकी उन्नति हो जाए। किस तरह के लोगों की आवश्यकता है, पहले तो उसका 3 अध्याय। इसलिए यदि कोई, पहले तो 3 अध्याय ये कथन सत्य कि यदि कोई अध्यक्ष मतलब अगुआ कलीसिया में कोई शिक्षक बनना चाहता है तो वो भला कार्य करने की इच्छा रखता है, इसलिए आवश्यक है कि वो निर्दोष हो। इसलिए आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, समझदार, सम्मानीय, एक के बाद करके आप गुणों को देखते हैं। नए नियम में आकर के हम देखते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए प्रावधान कराते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अमालेकियों से कहीं बढ़ करके शैतान के आक्रमणों से। फिर से इफिसियों के 6 अध्याय, हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं, हम लोग आत्मिक युद्ध में, शैतान हमारे पीछे पड़ा है, हमको नाश करना चाहता है। हम कई बार अक्सर लोग इस बात करते हैं, ऑफन हैव कॉन्वर्सेशन विद पीपल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध की बात। जब लोग आत्मिक युद्ध की बात करते हैं तो लोग जो है खाली दुष्ट आत्मा, ईविल स्पिरिट्स की बात करते हैं, खाली श्राप की बात करते हैं, कर्स की बात करते हैं, ताबीज की बात करते हैं, टोना टटका की बात करते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट इट इज इन द न्यू टेस्टमेंट। जो मुख्य बात है, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, स्पिरिचुअल आत्मिक युद्ध, पवित्रता, होलीनेस, लव फॉर गॉड, लव फॉर गॉड्स पीपल, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के लोग के लिए प्रेम, एंड लव फॉर गॉड्स वर्ड, और परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम, परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम। लव फॉर गॉड, लव फॉर गॉड्स पीपल, एंड लव फॉर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए लोगों के प्रेम, परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम। एंड इफिसियंस चैप्टर 6 में अगर आप देखेंगे, जब हमारा जो संघर्ष है मांस और लहू का नहीं है, 12 अध्याय में, 6 अध्याय 12 पद में, फ्लैश एंड बोन्स नहीं, हमें मांस और लहू नहीं, ब्लड एंड फ्लैश नहीं है, लोग देख रहे, छू नहीं सकते हम चीज़ों का, इट्स इंटरनल, स्पिरिचुअल, इनविजिबल, हमको प्रभु के प्रेम से दूर करता है, लोगों से प्रेम करने से दूर करता है, सेपरेट्स अस फ्रॉम द लव ऑफ पीपल। आई मीन विगटन, डिस यूनिटी, इधर बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इधर लड़ाई, उधर लड़ाई। आज चर्चेस में क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है, सबसे लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना मांगते हैं, लोग एक दूसरे से पास बैठना नहीं मांगते, क्यों, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, वी हैव लॉस्ट द बैटल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप आत्मिक युद्ध में हैं, शैतान फाड़ खाने लगे सी के समान है, वो हमको बार बार अलग अलग रीति से, ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय अस, द इविल वन। तो हमको पाप में परीक्षा में गिराएगा. सिन एंड ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. इसीलिए हमसे कहा गया इफिसियों से 6 अध्याय में, तुम हम निरंतर प्रार्थना में बने रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इफिसियों आप पढ़ेंगे 6 अध्याय में आत्मिक युद्ध की बात आती है. बिफोर, इससे पहले आत्मिक युद्ध की बात आती है, रिलेशनल रिलेशनशिप की बात आती है बहुत पहले. तो हमको पवित्रता में यौन संबंधों से दूर भागना है, अनैतिक यौन संबंधों से दूर भागना है, विवाह के बाहर विवाह से पहले किसी प्रकार के यौन संबंधी सेक्सुअल इमोरालिटी से भागना है. हमको अपने जबान को संभाल कर रखना है, होलीनेस, हाउ वी स्पीक, किस तरह के शब्द निकालते हैं हम, किस हमें पवित्रता में प्रेम बढ़ना है लोगों के साथ. एंड देन वेरी स्पेसिफिकली इन इफिशियंस चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, हाउ डू दे रिलेट टू वन अनदर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, होलीनेस, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माता पिता ने बच्चों से कैसे व्यवहार करते हैं, हाउ डू दे रिलेट टू वन अनदर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध. हम माता पिता अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करें, बच्चे अपने माता पिता से कैसे व्यवहार, स्वामी और दास, जो वर्क प्लेस में काम करने वाले मालिक लोग और दास लोग, हाउ डू यू रिलेट टू वन अनदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे से संबंधों में. दैट्स वेयर सबसे ज्यादा शैतान हमला करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंध में, अंतर संबंधों में. किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने देख लिया, किसी ने सूंघ लिया, किसी ने ज़्यादा पूछ लिया, किसी ने कम पूछा, किसी ने मेरे पीछे पूछा, किसी ने ऐसे क्यों पूछा, किसी ने वैसे क्यों पूछा. आई मीन यू टॉक अबाउट बींग फिल्ड विद द स्पिरिट, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे होने की बात कई बार लोग करते हैं ना. परमेश्वर के आत्मा से अगर हम भरे हुए, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, तो हम सहना सीखेंगे. क्यों? क्योंकि हम एकता को बनाए रखना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर परिवार में एकता नहीं होगी, विघटन होगा, तो जैसे इसराइली लोग अमालेकियों के सामने नहीं खड़े हो सकते थे, वैसे हम और आप एक कलीसिया शैतान के बाहरी आक्रमणों के सामने नहीं खड़े हो सकते. वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, हमको साथ में खड़े होना है. और हमारे बीच में एकता को बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको इनफ साधन, इनफ रिसोर्सेस, पर्याप्त साधन दिए. उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हिज होली स्पिरिट इज विद अस, उसका वचन हमारे साथ है, उसका हिज वर्ड इज विद अस, एंड उसके द्वारा निर्धारित किए गए अगुए हमें दिए गए. एज लॉन्ग एज दे टीच द वर्ड ऑफ गॉड, जब तक वो परमेश्वर के वचन का की शिक्षा देते हैं. क्योंकि जब वो शिक्षा देते हैं तो देह दृढ़ की जाती है, देह मजबूत की जाती है, वो मसीह में बढ़ती चली जाती है, और वो बढ़ करके परिपक्व होते हैं, और उसके द्वारा प्रभु को आशीष मिलती है. इसीलिए यीशु मसीह आए थे. आइए हम लोग प्रार्थना करें. प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों के लिए प्रावधान किए, आपने लोगों से प्रेम करते हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए निरंतर प्रावधान करते हैं. आपने उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया, आपने उनके बीच में न्याय का प्रावधान किया. यू प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर जस्टिस. और प्रभु, आज भी आप हमारे बीच में सुरक्षा और न्याय के लिए प्रावधान करते हैं, अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा, ताकि कलीसिया दृढ़ की जाए, कलीसिया एक हो, कलीसिया में एकता पाए जाए, ताकि ये परिवार एकजुट होकर के शत्रु के आक्रमणों का सामना कर सकें और सुसमाचार के कार्य को करने वाली हो सके, ताकि इन सब बातों के द्वारा प्रभु जी आप ही को मैं मिले, ताकि प्रभु जी आप ही ऊँचे पर उठाए जा सकें, आप बढ़ें और हम घटें. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन.